परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए पद्म पुराण के कथा प्रसंग में पाताल खंड के कथा में पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन के प्रक्रम में सुमति और शत्रुघ्न का संवाद चल रहा है। उस संवाद के अंतर्गत ही सुमति से शत्रुघ्न जी पूछ रहे हैं, आप तो सब कुछ लगभग जानते हैं, तो आप यह बतलाने की कृपा करें कि नीलगिरी पर्वत पर विराजमान जो ईश्वर हैं, वह कौन है जिनके दर्शन करके लोग चतुर्भुज स्वरूप को धारण करते हैं और वैकुंठ को प्राप्त कर ले रहे हैं, आखिर वो भगवान कौन है। सुमति कह रहे हैं नीलगिरी पर्वत पर जो भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं, वह श्री भगवान रामचंद्र के स्वरूप में ही अवस्थित है। वह एक दूसरा स्वरूप भले हो, लेकिन वही भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप में अवतरित हुए हैं अयोध्या में, जिनका संबंध हम लोगों के साथ है, और वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ का उनका प्रकरण लोग का हित करना है, इसलिए जो भगवान है वह लोक हित कारण से ही ये सभी प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि लोगों का पाप क्षय हो, लोगों के मन में जो शंकाएं हैं कुशंकाएं हैं कि उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, वो ब्रह्म हत्या का पाप का शमन हो, इसके लिए भगवान रामचंद्र जी अनुष्ठान कर रहे हैं। जबकि भगवान रामचंद्र का नाम उनके क्रियाओं से बड़ा है, एकमात्र नाम ऐसा है कि जो व्यक्ति का तारण कर देता है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम कही जे जमुहाही, तिनही न पाप पुंज समुहाही। जो व्यक्ति राम नाम लेकर के मुंह खोलता है, बंद करता है, जमाई लेता है, उस व्यक्ति के पास पाप के राशि पहुंचते ही नहीं है। जिस व्यक्ति के नाम का, जिसके नाम का इतना प्रभाव है, वही भगवान इस नीलांचल पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर विद्यमान है, जो पुरुषोत्तम स्वरूप है और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है वह। क्योंकि जब तक वो कोई क्रिया नहीं करेंगे, तब तक देख करके लोग उनके अनुसार क्रिया नहीं करेगा, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने ऊपर का जो आक्षेप है, उस आक्षेप को दूर हटाने के लिए हमें सत्कार्य करते रहना चाहिए। फिर दोनों ही जाते हैं, सुमति और शत्रुघ्न जी, और गंगा सागर में स्नान करते हैं, जहां गंगा जाकर के सागर में मिलती है, और पुनः नीलांचल पर्वत पर भगवान का दर्शन करते हैं और अपने को धन्यता का अनुभव करते हैं। इसी प्रक्रम में शेष जी ने कहा कि इसके बाद जो घोड़ा है वह घास को चरता है और चरते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। कहते हैं घोड़े का वेग मन के वेग के समान है, और घोड़ा और मन में अंतर नहीं है। घोड़ा घास को खाता है और मन विषयों में रमण करता है, मन विषयों को चरण करता है। इंद्रियाणि हयान्याहु, जो हमारे इंद्रिय हैं वो घोड़े ही हैं, और मन तो गजब का घोड़ा है, बहुत तेज घोड़ा है, उसकी गति का पता करना बड़ा कठिन है। यही का यही हम बैठे हैं और हमारा मन कहां कलकत्ता बंगाल कहां कहां घूम करके चला आएगा। और यह ऐसा घोड़ा है कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल को देख लेता है। हाँ, अर्धांति प्रसभम मन, वो जबरदस्ती सब कुछ कर देता है। हम सोते सोते राजा बन जाते हैं और उठ करके कंगाल हो जाते हैं। यहां बैठे बैठे अपने मन की बहुत सारी मिठाइयां खा लेते हैं। यह मन की शक्ति है। और भविष्य काल को चिंता करके अभी ही हम भयभीत होने लगते हैं कि भविष्य में क्या होगा। यहां तक कि अंधेरे में जा रहे हैं और रस्सी पड़ी हुई है, हवा से हिल रही है, हमको पता नहीं चला, हमें लगा कि कहीं सांप ना हो, और सर्प का भ्रम उसमें हो रहा है, और जब हवा से हिल रहा है हमको भय लग रहा है ये सांप है हमको काटेगा। ऐसे भय से भी कितने लोगों को अटैक आ जाता है, मर जाते हैं। जब टार्च चलाया जाता है तो देखते हैं ये तो रस्सी है। तो ऐसे गलत गलत वस्तुओं में भी सही धारणा हो करके ये जो मन है वह भूतकाल के विषय में, भविष्य काल के विषय में और वर्तमान काल के विषय में, तीनों ही विषयों में हमें लगाए रखता है। आंख से जो हमारे सामने घटनाएं घटी है भूतकाल की, उसको भी मन सोच लेता है, जबकि आंख खाली सामने की घटना को ही देखती है। कान वर्तमान काल के शब्द को ही सुनता है और नाक वर्तमान काल के गंध को ही स्मरण करता है, लेकिन मन यदि किसी बदबूदार गंध का स्मरण किया तो उस समय हमारा पूरा शरीर विकृत हो उठता है, वो बहुत गंदा था भाई, अभी तो नहीं है। लेकिन मन जो है उसका स्मरण करता है, क्योंकि इसका नाम चित्त भी है। चित्त कहते हैं, चित चयने धातु है, वह चयन करके रखता है और चयन करके रख करके उसको प्रदान कर देता है। जैसे कोई चीज हम संग्रह करके रखते हैं, जब जरूरत होता है तो आ जाता है। तो मन जो है ना, मन की जो मेमोरी हो, संग्रह करने की क्षमता, ये सब कुछ अपने में रखता है। और मन वृद्ध नहीं होता है, यद अजीरम जविष्ठम, बहुत तेज गति है, हृदय प्रतिष्ठम, और हृदय में अवस्थित है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प करे। न जाने हम सोते रहते हैं तो कहां कहां जाता है, उसी तरह से जागे अवस्था में भी यहीं के यहीं बैठे हैं, लेकिन यहां कथा में मन नहीं लगेगा, कहीं अन्यत्र वो भाग जाएगा जबरदस्ती। ऐसा मन है, इसलिए कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के कोड़े लगे। तो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, उन इंद्रियों में जो मन है वह सबसे जबरदस्त घोड़ा है, उसकी लगाम बड़ी तेज है, वो बहुत तेज भागता है, इसलिए उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। तो यहां भी घोड़ा घास खा रहा है और इंद्रियां भी जो है अपने अपने विषयों का चरण करती है। तो इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में इंद्रियों को घोड़ा बतलाया है और मन तो एकादशवीं इंद्रिय है, जिसको जिस पर अंकुश लगाने के लिए एकादशी का व्रत बतलाया है। और एकादशी के व्रत में बहुत विधान बतलाया है। यह दशमी एकादशी का आपने व्रत किया तो कम से कम द्वादशी को तेल वाला आहार मत ग्रहण करिए, दो बार अन्न ग्रहण मत करिए, ये सब बहुत सारे विधियां हैं। ये हम सुनते हैं कहते हैं तो लगता है कि सामान्य है, लेकिन ये जीवन में यदि एक भी इसके आचरण आ जाते हैं तो हमें बहुत कुछ सुधार हम में हो जाएगा। यदि इस कथा का एक अंश भी हम कहीं ना कहीं से लेकर के अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये जितना आख्यान है, घोड़े का आख्यान हो अथवा पुरुषोत्तम भगवान का आख्यान है, यह सब हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए ही है। यदि हमारा मन नियंत्रित हो जाए तो हम अपने आप में स्थित हो जाए तो संसार की विषय वासना हमें हैरान नहीं करेगी। कहां कहां से चालू होता है और कहां से ला करके धन रख ले, यह चिंता होती है और अंततः हमारे प्राण जो है छूट जाते हैं। उस समय में भी हमारा मन मोह में ही लगा रहता है, यह सबसे बड़ी व्याधि है। यही व्याधि वो घोड़ा है जो कई जगह घास चरते चरते जा रहा है। यह मन की संकल्पना शक्ति है भगवान की कि ये देखे हमको कितने लोग यहाँ मानते हैं। यदि राजा अश्वमेध करता है तो अश्व को इसलिए छोड़ता है कि यदि अश्व जा रहा है तो देखे हमारी शरणागति कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं, हमारा स्थान किनके किनके हृदय में है, कौन कौन हमें मानते हैं, यह जानने के लिए राजा अश्व को छोड़ते हैं, घोड़े को छोड़ते हैं। आगे सुमति से पूछा शत्रुघ्न जी ने कि अब आप बतलाइए, हम तो ऊपर भगवान के दर्शन कर लिए, दर्शन करके रिचार्ज हो गए, हम में पुनः शक्ति आ गई। बैटरी चार्ज होती है ना, तो जब भगवान का दर्शन करते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है। आज सुबह सुबह एक घटना घटी, एक बालिका आई कुछ कह रही थी, हमने कहा कि हनुमान जी के पास अनुष्ठान कर देना, तो कह रही है कि यहाँ तो है ना कीर्तन होता है, हमने कहा कि हाँ। तो ये जो बुद्धि है, उपस्थिति भगवान की हमारे जीवन में, यही बुद्धि जो है हमें कमजोर नहीं होने देती है। तो पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करके आए और पूछ रहे हैं कि हम लोगों का घोड़ा कहाँ जा रहा है अभी, क्योंकि घोड़े में चिंता लगी हुई है, घोड़े की सुरक्षा का भार शत्रुघ्न जी के ऊपर है। मंत्री ने कहा, महाराज राजा सुबाहु हैं, उनकी एक पुरी है जिनका नाम है चक्रांका, चक्रांका नाम की उनकी नगरी में अपना घोड़ा पहुंच रहा है और वहां घास खा रहा है। वहां वो लड़का, उनका सुबाहु राजा का लड़का एक है जिसका नाम है दमन, वह दमन वहां शिकार कर रहा था। शिकार के समय में उसने उसकी दृष्टि घोड़े पर पड़ती है और वह पढ़ रहा है घोड़े के आगे लगा हुआ पत्र कि यह भगवान रामचंद्र का घोड़ा है और यह राजा रामचंद्र का घोड़ा है और यह अश्वमेध के लिए छोड़ा गया है और सब लोग, जो राजा अपनी शरणागति स्वीकार करेगा उस राजा को भगवान रामचंद्र जी सहायता करेंगे और जो भगवान रामचंद्र जी, राजा रामचंद्र जी को नहीं स्वीकार करता है, इस घोड़े को पकड़ेगा, उसके साथ युद्ध होगा और युद्ध में यदि वो विजयी होता है तो ठीक है, अन्यथा वो पराजित होता है, पुनः उसे घोड़ा वापस करना होगा। ये सब संदेश अश्वमेध के घोड़े के ऊपर लिखा हुआ है। जो राजा का लड़का, प्रभुता पाहि काहि मद नाहि, प्रभुत्व हो और नई अवस्था हो फिर क्या पूछना है?